ओम शांति। जो भाई बहन दीदी के सानिध्य में आगे बैठने के इच्छुक हैं, वो आगे आ जाएं। हाँ, आ जाइए। कुछ हमारी बुजुर्ग बहनें माताएं कुर्सी के लिए आवश्यकता है उन्हें, आगे आ जाइए। आपको दीदी का सानिध्य मिलेगा, शक्ति मिलेगी, समीपता मिलेगी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। भाई बहनों की तरफ बहने, भाइयों की तरफ भाई जी। बस बहुत नहीं, बस और बस रुक जाओ, और रुक जाइए। बुजुर्ग बहने माताएं बैठे रही कुर्सियों पर, भाई थोड़े आ सकते। भाइयों की जगह खाली है, बहनों की फुल हो गई है। इधर टीचर्स आएंगे, पहला सोफा टीचर्स के लिए हम छोड़ दें। बहने अम्मा जी कुर्सी पे बैठो, आप तो बुजुर्ग हैं। कुर्सी पे बैठिए अम्मा जी, आप बुजुर्ग हैं। ओम शांति। आप सभी का मधुबन बेहद की घर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आप जिस शुभ संकल्प से मधुबन वैराग्य भूमि, तपो भूमि, परमात्म कर्म भूमि पे पधारे हैं, तो आपके शुभ संकल्प का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, बल्कि राजयोग की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी विराजमान हैं। हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। करतल ध्वनि से भी कर सकते हैं। वेरी गुड। हम सभी विदित हैं कि आदरणीय शीलू दीदी प्यारे शिव बाबा की बहुत अनन्य अनमोल रत्न है। हर की पौड़ी से आपको जाना जाता है। स्वयं भगवान ने आपको मधुबन में रखा है। आप पिछले 1960 से बाबा के ज्ञान का अध्ययन कर रही हैं। 1969 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा के सन्मुख ही आपने विश्व कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और 1976 से आप मधुबन में बेहद घर में रहकर विश्व की सेवाएं कर रही हैं। आप सभी को मालूम हो, योग की जो कमेंट्री हम सभी ब्राह्मण सीखते हैं, बोलते हैं, वो बाबा ने आपको, आपके द्वारा ही उसका अनुसंधान कराया, खोज कराई, रिसर्च कराया, और इस राजयोग के प्रशिक्षण को भी आपने प्यारे बाबा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके तैयार किया। आप राजयोग की प्रथम मुख्य शिक्षिका हैं। आपने पूरे विश्व में इस राजयोग की शिक्षा देने के लिए और आत्माओं का संबंध परमात्मा से जोड़ने के लिए पूरे विश्व भर में किया। आपने मुंबई से ग्रेजुएशन किया साइंस में, और आपने पूरे विश्व की भ्रमण करके हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी भाषाओं की आप प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता हैं। आप प्यारे बाबा के ज्ञान के सूक्ष्म गुह्य रहस्यों को हम सभी ब्रह्मावत्सों के लिए बहुत सहज रीति और बहुत शक्तिशाली रीति हमको प्रदान करती हैं। ऐसी आदरणीय वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, हमारी राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की जितनी भी विंग्स हैं, उनमें आप एजुकेशन विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं। ऐसी आदरणीय दीदी को अपने बीच में पाकर हम बहुत हर्षित हो रहे हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमें भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य और मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय दीदी, पुनः एक हाथ की ताली से हम दीदी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपकी जिभ्या पर साक्षात सरस्वती का वास है, वो हीरे मोती हम अपनी बुद्धि की झोली में भरेंगे। आदरणीय दीदी,
शुरू करने से पहले मैं हमारी कविता बहन को कहेंगे आप भी अपना परिचय दें। क्योंकि अभी इस भट्टी में यही आपका सब कुछ संभालेगी, इसलिए पहले अपना परिचय दीजिए।
दीदी आपने कहा है तो मैं आपको अपना परिचय देती हूँ, बताती हूँ कि ज्ञान तो बाल्यकाल से मिला और लौकिक शिक्षा पूरी करने के बाद बाबा ने विश्व सेवा के लिए मुझे सेंटर पर रखा। तो लगभग 50 वर्षों से बाबा की पढ़ाई को पढ़ रही हूँ और 45 वर्षों से अधिक ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित जीवन हो गया है। और बाबा का, दादियों का और हमारी वरिष्ठ दीदियों का बचपन से ही वरदहस्त रहा है, पालना मिली है, उसमें पलते बड़े होते और अपने जीवन को सहज।
कहाँ से निकले हैं, कहाँ रहते हैं?
लौकिक जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ और अलौकिक सेवाएं देने का सौभाग्य भरतपुर शहर को है, जो यज्ञ इतिहास का बहुत बड़ा स्थान है। भारत में भगवान आए तो भरतपुर महाराजा की ब्रजकोठी में आए, वो भरतपुर के स्थान पर बाबा ने सेवा करने का मौका दिया। इस प्रकार से भरतपुर क्षेत्र में लगभग 15 सेवा केंद्र हैं और 300 गीता पाठशालाएं हैं, 40 के करीब टीचर बहने हैं, सभी बाबा की छत्र छाया में और मधुबन यज्ञ की पालना में पल रहे हैं।
सबका परिचय भी लीजिए ना
जी। जो इलाहाबाद से आए हैं भाई बहन,
प्रयागराज
से आए हैं जी। जी,
टीचर्स कौन आई है?
टीचर्स कौन है प्रयागराज, इलाहाबाद से जी?
प्रयागराज का बेला,
प्रयागराज से जी। ठीक है, बैठ जाइए, बाद में टीचर सभी मिलके जाएंगे।
हाथ उठाए
प्रयागराज के सभी भाई बहन,
खड़े हो जाएंगे,
खड़े हो जाओ।
स्वागत है,
स्वागत है आपका।
बैठिए।
टीचर्स बहने भी उठ गए, टीचर्स बहने एक बार फिर से प्रयागराज की टीचर्स बहने उठे जी।
अभी जो सूरत से आई है,
जो सूरत से आए हैं वो सभी उठे सूरत से जी।
टीचर्स बहने हाथ उठाए,
टीचर्स बहने पीछे बैठी, आगे सीट नहीं थी है ना। अच्छा। तो खाली रखेंगे आगे की सीटें तो बहने बैठ सकेंगे जी।
बलसार से भी आए अलग से या
नहीं? सूरत
में
ही, सूरत ही में ही बलसार है। लोटस अहमदाबाद, लोटस ये लोटस का ग्रुप है दीदी,
इनको तो ताली बजाओ और पहुंच जाते हैं। लोटस हाउस वाले अहमदाबाद वालों को ये लॉटरी है
जी।
दादी ने कहा आ जाओ और आ गए भाग कर के,
भाग के आ गए। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा। बैठिए। लो, टीचर
लोटस की टीचर्स बहने खड़ी रहेंगी, लोटस की बहने टीचर्स।
अच्छा, और भी है
जी, जी। आप सबका भी स्वागत है, अभिनंदन है। बाबा की गोदी में आ गए।
छोटी बच्ची आगे आ जाओ, इसकी मम्मी का।
छोटी बच्ची आगे आ जाओ, दीदी बुला रहे हैं।
मम्मी का है
दीदी, भरतपुर से भी एक युगल आई है, एक युगल भरतपुर से भी आई है।
अच्छा, एक युगल भरतपुर से भी आए, कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, वेलकम।
कल ही इन्होंने बोला तो दीदी से परमिशन लेके फिर बुलाया,
क्योंकि प्रयागराज से कम आए ना, थोड़े 200 का था लेकिन का 75 ही आए
जी।
हम समझ सकते हैं, बहुत थक गए होंगे ना, मेला किया, कुंभ मेला किया,
विहंग मार्ग की सेवा की है।
जिन्होंने कुंभ मेला में बहुत सेवा की वो हाथ उठाए, प्रयागराज वाले देखो सब ने सेवा की है। बहुत अच्छा, आपको बहुत 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 सबसे ज्यादा मुबारक है। ओम शांति। प्यारे बाबा के घर में बाप दादा सर्व मधुबन निवासी तथा हमारे तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन में आना, वो भी पांडव भवन में रहना, ये भी एक बहुत बड़ी लॉटरी है, ये कहो तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, जब से ज्ञान सरोवर शांति वन बना तब से पांडव भवन में रहने का मौका कम मिलता है भाई बहनों को, क्योंकि शांति वन में अधिक प्रोग्राम चलते हैं और यहाँ पर टीचर्स बहने आती है एक दिन के लिए बस तपस्या करने, क्योंकि मधुवन है तपस्या भूमि। प्यारे ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियों ने यहाँ ही तपस्या की है, तो पांडव भवन कहो मधुवन कहो, ये ऐसा स्थान है जहाँ अंदर आते ही वो तपस्या का अनुभव होने लगता है। और आप तो विशेष तपस्या करने आए हैं, तो आप सबको जैसे ही स्थान मिला और ये कहेंगे विजय माला पहनने को मिली ना, सबको मिली ना, सबको मिल गई ये माला। अब इसको कहते हैं विजय माला, क्योंकि विजय पाकर के आप यहाँ आए हो। कौन सी विजय, कैसी विजय, कितने विघ्न आए होंगे आपके सामने, ऐन मौके पर आपको कहा गया होगा अभी मत जाओ, आज नहीं जाओ, हाँ अभी मधुबन मत जाओ, ये काम है वो काम है वो काम है, और आपने कहा नहीं कुछ भी हो ये सब बाद में, अभी तो मुझे मधुबन जाना है, कुछ भी हो जाए हमको मधुबन जाना है, तो ये लगन लग गई आप में और आप भाग करके आ गए। कई ऐसे भी होंगे जिनका कोई प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन लास्ट मिनट हाँ टीचर ने कह दिया तो एक सीट खाली है किसको चलना है, तो सब तैयार हो गए। ऐसे भी थे जो एन मौके पर लास्ट मिनट तैयार हुए, हाँ ऐसे भी थे, देखो कितने सर जी जी हाँ, पर जो मिले कपड़े डाले बस भागे। तो वही मधुबन में जाने की लॉटरी मिल रही है तो बहुत अच्छा। आइए आइए आगे आइए, हमारी भारती बहन आई है लोटस से, आइए आइए। और कई ऐसे भी होंगे हाँ जिन्हों को जिनकी टिकट बनी हुई थी, सब कुछ बनी हुई थी, लेकिन ऐन मौके पर कोई ऐसा कारण बन गया जो नहीं आ सके। यहाँ आ जाओ ये इधर इधर सामने आ जाओ। ऐन मौके पर वो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया और दूसरे आ गए ना, परंतु हम कहते हैं जो आए जो पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली है। आपने बैज में पढ़ा होगा इस भट्टी का शीर्षक क्या है, हाँ पढ़ा आपने ठीक ढंग से पढ़ा, बेहद की वैराग्य वृत्ति संपन्नता की ओर। अभी तो बाबा ने हम बच्चों को कितना बड़ा लक्ष्य दिया है और उससे भी बड़ा उद्देश्य दिया है। लक्ष्य और उद्देश्य में क्या फर्क है तो होता है, लक्ष्य तो छोटे छोटे गोल्स होते हैं, भाई यहाँ तक पहुँचना है, फिर इससे आगे यहाँ तक पहुँचना है, इसके आगे यहाँ तक पहुँचना होता है, ये लक्ष्य होता है। ये पहले हमको यहाँ से अहमदाबाद जाना है, फिर अहमदाबाद से मुंबई जाना है, तो ये अलग अलग लक्ष्य है, फिर वहाँ से और आगे जाना है। तो एक है लक्ष्य और दूसरा है उद्देश्य। उद्देश्य तो बहुत दूरगामी होता है, हम सबका उद्देश्य क्या है अगर हम कहें तो शॉर्ट में लोग पूछते हैं ना, आप लोगों जो सिखाते हो क्या आपका उद्देश्य है, तो हम यही कहते हैं यहाँ हम आते हैं मनुष्य से देवता बनने, यही कहते हैं ना, क्यों आते हैं यहाँ, मनुष्य से देवता बनने, ये हमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है जहाँ हम मनुष्य से देवता बनते हैं, ये हमारी डिग्री है स्टेटस है। अगर और सूक्ष्म कहें तो हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य क्या था, हम ब्राह्मण बने। पहले तो शूद्र थे, शूद्र थे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई ब्राह्मण हम बन सकते हैं। हम तो लौकिक जातियों में ही फंसे पड़े थे। भारत में कहते ना, लौकिक जातियों में इतने फंसे पड़े हैं लोग, वो समझते बस हम ही हैं। और उसमें भी लौकिक में जो ब्राह्मण होते हैं, लौकिक में उनको तो बड़ा अभिमान होता है, मैं ब्राह्मण हूँ बताते रहते हैं। लेकिन सच्चे ब्राह्मण तो हम अभी संगम पर बनते हैं, जबकि ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं। तो जैसे हमने ज्ञान पाया और ये पता चला कि हम आत्मा है, हम परमात्मा की संतान है, अभी ये संगम युग है और बहुत बड़ा उद्देश्य मिला हमें, तो हम बाबा के बच्चे बन गए, मुख संतान बन गए, ब्रह्मा की संतान। और हमने क्या कहा कि हमारा अब नया जन्म हुआ है, शूद्र से हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने। लेकिन ब्राह्मण की भी क्वालिफिकेशंस होती है, उसमें भी बाबा कहते हैं कई तो कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, कोई अध पक्के हैं, थोड़े कच्चे हैं, तो उसमें भी तो वैरायटी है। स्टेजेस बाबा बताते हैं, ब्राह्मणों में भी स्टेजेस है, निश्चय के आधार पर है, सेवा के आधार पर है वो सारी स्टेजेस। तो उस हिसाब से हम ब्राह्मण बनते हैं। फिर ब्राह्मण से हमको और आगे क्या लक्ष्य मिलता है कि हमको बाप समान बनना है। बाबा रोज मुरली में कहते हैं बाप समान बनना है। पर ब्राह्मण तो बने, पर ब्राह्मण से बाप समान बनने के बीच में भी बहुत लक्ष्य है, जो आज बाबा ने कहा फॉलो फादर, शो फादर का शो करना है, सन शोज फादर। तो फादर का शो करना है, जो बाप ने किया वो हमें करना है, तभी हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का नाम बाला कर सकेंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हमारे सामने है। आज की मुरली में बहुत स्पष्ट बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कैसे सब धक से त्याग किया, क्योंकि उनको पता चला अरे मैं तो ऐसा ऊंचा देवता बनने वाला हूँ, हाँ मैं तो श्री नारायण बनने वाला हूँ। फिर विनाश का साक्षात्कार कराया, स्वर्ग का साक्षात्कार कराया, और बाबा को एकदम बेहद का वैराग आ गया, कहा क्या ये सब गधाई छोड़ दी, अपना इतना हीरे जवाहरातों का व्यापार था, कितना फ्लरिशिंग था, कितना नाम कमाने वाला था, क्योंकि अंग्रेजों के साथ और ये राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना था बाबा का, लेकिन धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उद्देश्य बहुत ऊंचा था। कहा ये क्या करना, हीरे तो बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे। तो इसीलिए बाबा ने बस उसके लिए तपस्या शुरू की। बाबा की आप कई फोटोज देखेंगे, ब्रह्मा बाबा की तपस्वी मूर्त तपस्या में बैठे हैं। कैसे बाबा अमृत वेले उठकर तपस्या करते थे, जब बाबा को समय मिलता था तपस्या करते थे, अशरीरी बन जाते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया होगा आप सोच सकते हैं। तो तब वो बाप समान बने, पहले तो शिव बाबा के गुण का धारण किए, जो बाबा के गुण है उनका मैं आत्मा गुणों का स्वरूप हूँ, वो शांति का सागर है मैं शांत स्वरूप हूँ, वो प्रेम का सागर है मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो जो शिव बाबा के गुण है वो सारे धारण किए, पहले तो पता ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। फिर ब्राह्मणों के भी तो बहुत गुण होते हैं, ब्राह्मणों के कौन से गुण गाए जाते हैं, शिव बाबा के तो गुणों की तो महिमा करते ही है, लेकिन ब्राह्मणों के गुणों की महिमा कौन क्या है, ब्राह्मण किसको कहेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली हम बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, तो ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, ब्राह्मण के लिए क्या कहेंगे। ब्राह्मण उसे कहेंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, अमृत वेला नहीं करते हैं, तो फिर कच्चे पक्के ब्राह्मण हुए, सच्चे ब्राह्मण तो नहीं हुए। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो सच्चा ब्राह्मण। सवेरे मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तपस्या करते हैं। फिर ब्राह्मण किसको कहेंगे, जो ब्रह्म भोज खाते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। ब्रह्मा भोजन अर्थात शुद्ध शाकाहारी, बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन, बाबा को भोग लगाया हुआ भोजन फिर स्वीकार करते हैं, वो ब्रह्मा भोजन खाने वाले सच्चे ब्राह्मण। फिर तीसरा ब्राह्मण किसको कहेंगे, जो जिनको ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान अर्थात जो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से ज्ञान प्राप्त किया, हम उनके थ्रू कैसे प्राप्त करके सारे ज्ञान को हजम किया, बाबा की मुरली को पचाया, खाली हमने सुना नहीं, समझा नहीं, केवल सोच समझ करके केवल नहीं बने ब्राह्मण, लेकिन उसका स्वरूप बने, जिसको बाबा कहते हैं, जो बाबा के महावाक्य है उन महावाक्यों का स्वरूप बने, तब कहेंगे ब्राह्मण। तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या जिसको कहेंगे, ये ब्रह्म विद्या है, ये पढ़ाई है। बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा, ये भक्ति नहीं है, भक्ति में तो भटकते रहते हैं, आज इस मंदिर में, आज उस मंदिर में, आज यहाँ ये गुरु वो गुरु, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। लेकिन ज्ञान माना जैसे पढ़ाई होती है, एक ही स्कूल होता है, ऐसे नहीं आज ये स्कूल में पढ़े कल दूसरे स्कूल में जाएंगे, परसों तीसरे स्कूल में जाएंगे, नहीं, एक ही स्कूल है, एक ही टीचर है, एक ही पढ़ाई है। तो वो कहेंगे भाई ये गॉडली स्टूडेंट्स बन गए। तो इसीलिए ब्राह्मणों की विशेषता क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मण वो उसको कहते कच्छ में कुरम, कच्छ में कुरम, कुरम माना किताब, कुरम किताब को कहते, कुरम से कुरान आया है, ये बिब्लियोग्राफी भी कहते इंग्लिश में, तो इसे बाइबल शब्द आया, तो ये कुरान बाइबल ये सब कहते ज्ञान की पुस्तकें हैं। और हम तो कहेंगे गीता, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया जिससे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तो इसीलिए ब्राह्मण उसको कहेंगे जो ब्रह्म, जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो अर्थात ईश्वरीय पढ़ाई हो, विद्या हो, सच्ची विद्या, पढ़ाई में भी विद्या, विद्या और ज्ञान में भी थोड़ा अंतर है। विद्या के लिए कहावत है सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही होती है जो मुक्ति दिलाए, बाकी तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जनरल नॉलेज दुनिया में बहुत है, IQ कहते हैं ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत होशियार होते हैं, सारी दुनिया का जैसे उनके पास ज्ञान होता है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु वो विद्या हमें चाहिए जो हमें दुखों से, रोगों से, शोक से, संताप से, कष्ट से, पीड़ा से, इन सब से मुक्त कर सके, वो सही विद्या। और उसी विद्या से जिसको बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, तो वो विद्या बाबा देते हैं। तो ब्राह्मण वो जो पढ़े और पढ़ाए, अगर न पढ़ता है न पढ़ाता है तो वो ब्राह्मण कहेगा, इसीलिए ये क्वालिफिकेशंस है। तो ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, ब्रह्म भोज हो, और फिर चौथा ब्रह्मचर्य हो, जो ब्रह्मा ने आचरण किया वो आचरण हमारे जीवन में हो। तो ब्रह्मचर्य जिसको बाबा कहते, आज भी बाबा ने यही कहा, यही सबको पैगाम दो, आज की मुरली थी ना, पढ़ी सबने, जिन्होंने आज की मुरली भी पढ़ी वो हाथ उठाएं, अच्छा सबने पढ़ी, वेरी गुड। तो बाबा की आज मुरली में क्या था, ये पैगाम देना है, एक तो तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो, और तीसरा पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता ही मेन है, ये भी पैगाम देना है। आज हमारा तो महीने का व्यक्त इशारा ही यही चल रहा है, प्यूरिटी, पवित्रता। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य हो, और फिर और आगे भी आता है कि ब्राह्मण वो जो यज्ञ करे और स्वाहा करे और दूसरों से स्वाहा करवाए। ब्राह्मण क्या करते हैं, यज्ञ करते ना, तो स्वाहा स्वाहा, फिर उनको आप भी कहो स्वाहा स्वाहा, सभी से स्वाहा स्वाहा कराते हैं। तो ब्राह्मण उसको कहेंगे जो सबसे स्वाहा कराए, क्या स्वाहा करना है, विकारों को स्वाहा, तन मन धन स्वाहा। हाँ, तभी बाबा कहते इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है का मतलब क्या है? हम तो विनाश नहीं करते हैं, विनाश करने वाले तो दूसरे बैठे हैं, हम तो स्थापना करने वाले हैं, है ना। कई हम लोगों से पूछते हैं कि विनाश कब होगा। पहले हम लोग कहते थे विनाश होगा तो मानते नहीं थे, अभी तो मानने लगे हैं कि बरोबर विनाश होगा, लेकिन कब होगा फिर हमसे पूछते हैं। तो हम कहते हैं हम विनाश करने लिए नहीं, हम तो स्थापना करने लिए। विनाश करने वालों से पूछो कब होगा, हमारे से ये पूछो कि सतयुग कब आएगा। क्या पूछो हमसे, विनाश कब होगा ये हमसे नहीं पूछो। लेकिन बाबा कहते हैं वो विनाश तो तैयार है, सामने खड़ा है, बस बटन दबाने की देर है। आज भी हम कहां वो एक शॉट एक आया था, क्लिपिंग आई थी यूट्यूब पर, जिसमें बताया कि अगर पाकिस्तान अगर कोई भी वो भेजता है अपना मिसाइल, तो भारत के पास वो मिसाइल है जो एंटी मिसाइल की तरह वो एंटी मिसाइल बनके उसके मिसाइल को उड़ा दे स्पेस में। अगर दूसरी जगह भेजेगा तो वहां भी से भी मिसाइल हमारा जाएगा, उनके मिसाइल को एंटी मिसाइल हमारा खत्म कर देगा। जैसे महाभारत में दिखाते ना, रामायण में भी दिखाते, उसने मारा तो उसने मार करके उसको आकाश में उड़ा दिया। तो ऐसे भी तैयार हुए अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, ये सभी अस्त्र तो तैयार हुए, तो कोई महाभारत का वही समय है। तो इसीलिए बाबा कहते विनाश की तो तैयारी पूरी हो चुकी है, पर अब बाकी रुका हुआ क्या है, रुका हुआ क्या है। बाबा कई बार कहते हैं कि प्रकृति भी पूछ रही है, बाबा कब तक हम रुके रहें, और एडवांस पार्टी भी पूछ रही है, बाबा कब हम अपना काम शुरू करें। सब पूछ रहे हैं बाबा से, और बाबा क्या जवाब दे, क्या जवाब दे, बच्चे तैयार नहीं हुए हैं ऐसे। तो इसलिए बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे बाबा से पूछते बाबा विनाश कब होगा, और बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कारण विनाश रुका हुआ है, तुम तैयार हो जाओ तभी तो पर्दा खुले। विनाश वाले तो फटाफट तैयार है करने के लिए। जैसे मकान को तोड़ने के लिए तो मेहनत लगती है क्या, फटाफट फटाफट हो जाएगा, लेकिन बनाने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो हम तो बनाने वाले ना, नष्ट करने वाले तो हम नहीं हैं। तो इसलिए हम कहाँ तैयार हुए हैं, हम तैयार नहीं हुए, इसीलिए विनाश रुका हुआ है। तो इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, इसका मतलब है जब से शिव बाबा ने यज्ञ शुरू किया 1936 में, कल का दिन आपको पता है ना, 5/5/50 आपने पढ़ा होगा, जब ये यज्ञ यहाँ कराची से यहाँ आबू में आया 5/5/50 को, तो ये 75 साल कल पूरे हुए माउंट आबू में आए हुए। तो इसीलिए ये यज्ञ मानो यहीं से शुरू हुआ, जो बाबा के सेंटर्स चारों ओर खुले। तो इसीलिए बच्चे तैयार नहीं हैं, अब बच्चे कब तैयार होंगे वो बाबा पूछते रहते हैं। तो इसीलिए 1936 में जैसे ही बाबा ने यज्ञ शुरू किया, शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा में, तब से ही मानो विनाश का भी संकल्प आया। विनाश का संकल्प आया माना उसके पहले अणु परमाणु होता है ना, एटम, तो एटम का तो ज्ञान था, लेकिन वो एटम भी तोड़ सकते हैं, उसको भी उसका भी विस्फोट कर सकते हैं। और एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम के आत्मा के नाम से एटम आया है, आत्मा सबसे छोटी बिंदी आत्मा है, तो सबसे छोटा पार्टिकल उसको एटम का। लेकिन फिर उस समय पता चला 1936 में कि एटम के अंदर भी क्या है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन है, ये सभी है, और एक इलेक्ट्रॉन के विस्फोट से इतनी शक्ति पैदा होती है, और उसमें अगर अनेक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो, अनेक एटम्स हो, तो एटम बॉम्ब जिसको कहते हैं ना, वो बनता है, और इतनी शक्ति फैलेगी जो विनाश करेगी। तो उसी समय ये ज्ञान भी मिला वैज्ञानिकों को, ये इन्होंने ये आविष्कार किया। तो देखो बाबा की स्थापना 1936 में हुई और 1936 में ये ज्ञान मिला, जो आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध हुआ और पहला एटम बॉम्ब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया जापान को, और कितना भयंकर विनाश हो, तो छोटा बॉम्ब था, अभी तो कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बन गए और कितने क्या एक जगह। बाबा कहते लश्कर की भी जरूरत नहीं है, कोई मिलिट्री की भी जरूरत नहीं है, एक जगह बस बैठो, खाली बटन दबाओ और विनाश करो, ये हालत हो गई। इतना बढ़ गया है सब कुछ विनाश का साधन, लेकिन बच्चे तैयार नहीं है, और भारत तो कभी लड़ाई शुरू करेगा नहीं, लड़ाई भारत नहीं शुरू करेगा, लेकिन अपनी डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगा। और यहाँ तक भारत कहता है कि अभी वो समय नहीं है युद्ध का, क्योंकि अगर युद्ध शुरू हुई मानो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बचने वाला है, इसीलिए वो चिंगारी लगे तो बस खत्म, लेकिन अभी रुका हुआ है, लगेगी जरूर। तीनों तरह से बाबा कहते विनाश होगा, सारा प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आएंगी। आपको मालूम होगा ना कि जब यज्ञ में थे 14 साल, तो उस समय कितना सारा जो कुछ विनाश की लीला हुई, एक और 1945 में एटम बॉम्ब गिराया, तो तब तो यज्ञ तो कराची में ही था, और उस समय पता था कि कैसे जापान का पूरे 2 शहर नष्ट हो गए। तब पूछा बाबा से, बाबा ये विनाश है? तो बाबा ने क्या कहा, नहीं बच्चे ये तो केवल एक ट्रेलर है, एक ट्रेलर है। फिर उस समय दूसरा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, रक्त की नदियां बही, इतनी रक्त की नदियां बही, ट्रेन की ट्रेन कैसे उनको हत्या कर दी, बहुत कुछ हुआ जिसका इतिहास में कहीं वर्णन भी नहीं है, बहुत कुछ हुआ। तो वो जो गृह युद्ध हुआ, खून की नदियां बही, तो बाबा से पूछा, बाबा यही विनाश है? तो बाबा ने कहा, नहीं ये भी ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। फिर प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत हुई, क्वेटा एक शहर है बलूचिस्तान में पाकिस्तान में, उसका पूरा का पूरा शहर नष्ट हो गया, वो क्या कहते हैं भूकंप आया, पूरा का पूरा शहर, इतना बड़ा शहर मानो मुंबई जैसा शहर हो, और इतना जबरदस्त भूकंप आए, सारे बिल्डिंग्स इतनी ऊंची ऊंची सब गिर जाए और सब खत्म। खाली एक तत्व नहीं, पांचों तत्व काम करे एक साथ तो क्या होगा, एक और बाढ़ आ जाए, सागर हब कर ले अपनी जमीन, फिर दूसरी तरफ आग लगे, तीसरी तरफ भूकंप आए, चौथी तरफ आंधी तूफान आए, आकाश में बिजली चमके। तो पांचों ही तत्व अगर अपना काम करे एक साथ तो क्या होगा, अभी तो जो कुछ होता है एक तत्व काम करता या दो तत्व काम करते, खाली आग तो आग, लेकिन आग के साथ हवा भी हो तो आग तो और भड़केगी, फिर आग के साथ फिर उसके बाद भूकंप भी आए साथ में, फिर सुनामी भी आ जाए, तो ये सब होगा तो कौन बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। तो उस समय ये हुआ था, काफी कुछ हुआ था। तो बाबा से पूछा गया, बाबा ये क्या विनाश है? तो बाबा ने कहा, नहीं ये भी ट्रेलर है। बताओ ट्रेलर ही इतना भयंकर था तो जो जो सही जो रियल रूप में होगा वो कैसा होगा ना, सोचने की बात है। लेकिन बाबा कहते अभी भी लेट है, टू लेट नहीं है। अभी तक बाबा यही कहते हैं ना, लेट आए हैं कई बच्चे, अभी अभी ज्ञान में आए हैं, तो कई बाबा को कहते हैं, उस दिन अव्यक्त मुरली में भी था, बाबा हम तो लेट आए हैं। तो बाबा कहते हैं अभी भी भले लेट आए हैं, लेकिन अभी भी मार्जिन है फास्ट जाने की, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। ऐसे यहाँ भी बैठे होंगे जो 2 साल से ज्ञान में है, वो हाथ उठाएं, 2 साल से ज्ञान में, देखो ये लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने वाले हैं, देखो तो बहुत आगे जा सकते हैं। आज तो बाबा ने यहाँ तक कह दिया टीचर से भी स्टूडेंट और आगे जा सकते हैं, टीचर वहीं की वहीं और स्टूडेंट आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते अभी भी मार्जिन है। कई बार पहली बार वालों को बाबा उठाते और बाबा कहते हैं कि अभी लेट आए हो, लेकिन टू लेट नहीं आए हो। तो फिर हमसे कई पूछते हैं टू लेट का मतलब क्या, टू लेट कब होगा, कब कहेंगे टू लेट, कब कहेंगे, उसका भी कोई हिसाब है या पता ही नहीं, टू लेट कब कहेंगे, जब पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब तरफ से ही कैसे हाहाकार होगा। केवल प्रकृति नहीं, अपने संस्कार भी बहुत प्रकट होंगे। जो द्वापर कलयुग के संस्कार थोड़े दबे हुए हैं वो भी प्रकट होंगे। अंतिम हिसाब किताब हमारे वो भी तो प्रकट होंगे कि कितने विघ्न आएंगे। हाँ, सब प्रकार के विघ्न आएंगे और उस समय हमारी स्थिति कैसी होगी वो बाबा कहते हैं। वो उसके लिए तैयारी करनी है। जो बाबा हर मुरली में हमें एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ, एक सेकंड में, दो सेकंड भी नहीं, हर बार बाबा एक सेकंड कहते हैं, इसलिए दो सेकंड में हो जाओ, एक सेकंड में उसी वक्त। तो ये तब होगा जब बहुत काल का अभ्यास होगा। तो इसीलिए ब्राह्मण बने। अच्छा, फिर ब्राह्मण से आगे क्या बनेंगे? बाप समान संपन्न बनेंगे। तो हर समय बाबा कहते हैं बाप समान संपन्न बनने के लिए क्या करना होगा? कोई भी कर्म करो, कोई भी बोल बोलो, कोई भी मन में विचार लाओ, उस समय ये सोचो ये बाप समान है। अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ होते तो ऐसे करते? ब्रह्मा बाबा ऐसे सोचते? अगर ब्रह्मा बाबा नहीं सोचते तो मुझे भी नहीं सोचना। अगर ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं कहते तो मुझे भी नहीं कहना है, क्योंकि बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं करते तो मुझे भी नहीं करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया उसके लिए देखो कितनी किताबें बन गई है। ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, 20 कदम, 25 कदम। तो ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं, उसके आधार से हमने कितनी विशेषताएं धारण की है, तभी तो बाप समान बनेंगे। फिर और आगे बाप समान बनने के बाद फिर और आगे लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन करके फिर फरिश्ता बने। तो अभी ब्रह्मा बाबा फरिश्ता के रूप में वतन में हैं, तो फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनने के लिए क्या करना होगा वो भी लंबी लिस्ट है। रिश्ते के रिश्तों से परे भी, फर्श के रिश्तों से परे, तभी तो फरिश्ता बनेंगे। न्यारा प्यारा जो बाबा ये सारी जो भी बातें कहते हैं वो फरिश्ता की स्थिति की बातें हैं। डबल लाइट स्थिति, न्यारा प्यारा स्थिति, फर्श से के रिश्ते से ऊपर, देवभान से बिल्कुल परे, जो भी बाबा कहते हैं फरिश्ते की बहुत क्वालिटीज है, वो फरिश्ता बनना है। फिर फरिश्ता बन के क्या करना है उसके बाद? फिर लक्ष्य क्या और आगे? उसके बाद क्या लक्ष्य है? घर जाना है। आज बाबा ने ये भी कहा घर जाना है, अभी घर जाना है, घर जाना है। जहाँ जाना होता है वो याद आता है ना, घर जाना है। हमारी बड़ी दीदी का यही नारा था। बड़ी दीदी के पास, दीदी मनमोहिनी के पास कोई आते थे ना ये समस्या लेकर, वो समस्या, कई समस्याएं तो है सबको, तो समस्या लेके दीदी के पास आते थे तो दीदी कहती थी छोड़ो अब घर जाना है, अब घर जाना है, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। एक पक्षी है, डाली को जोर से पकड़ के बैठा, एकदम अपने पंजों से पकड़ा हुआ है डाली को, और फिर देखता है कि अरे दूसरे पंछी तो उड़ रहे हैं और अपने पंख भी फड़फड़ाए, पर उड़ सकेगा? उड़ सकेगा, पर कब उड़ सकेगा? जब वो अपने वो पंजा खोले। पंजा खोले तो पंख तो है ही है, किसने आपको बांध के रखा है? पंख तो है। आत्मा तो वैसे भी कहते आत्म पंछी है, आत्म पंछी है। उड़ने में कितनी देर लगेगी? आत्मा निकल जाते शरीर से, बाबा कहते 1 सेकंड में लंदन पहुंच गए, कितनी देर लगेगी? जहां उसका हिसाब किताब होगा आत्मा वहां पहुंच गई। तो इसीलिए आत्म पंछी बन करके आत्मा उड़ गई। तो परंतु वतन में जाना है, परम धाम में जाना है, कैसे जाना है? ऐसे नहीं चले जाएंगे। अगर हिसाब किताब होंगे, बोझ होगा, पापों का भी बोझ है, कर्मों का भी बोझ है, तो इतना जल्दी नहीं उड़ेंगे। अब बोझ होगा ना, तो या तो योग बल से चुकतू करना है, या तो सजाएं खा करके चुकतू करना है, या तो योग या तो भोग। ये दोनों तरीके हैं हिसाब किताब चुकतू करने के, परंतु जाना तो सबको घर में, तो सब घर जाकर के फिर बाबा क्या कहते हैं, खाली टच करके आ जाना है, वहां बैठ नहीं जाना है। दुनिया वाले तो कहेंगे बस मोक्ष चाहिए, हमें आना ही नहीं दुनिया में, और हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, नहीं दुनिया में आना है, फटाफट आना है, ऐसे नहीं परम धाम में बैठ जाना है। पर जाना जरूर है, उसके वहां जाए बिना सतयुग में नहीं आएंगे, कोई भी आत्मा सतयुग में कलयुग से एकदम नहीं जा सकेगी, घर जाना ही होगा। घर जा करके वहां जैसे हाथ लगा कर, बाबा कहते ना पेड़ को हाथ लगा करके बच्चे वापस आते, क्योंकि फिर से जीरो से शुरू करा, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल बन जाना है ना, जीरो से शुरू, कोई भी खेल होता कुछ भी होता है फिर नए से शुरू करना है, तो नहीं तो नए से नहीं करेंगे तो पिछला थोड़ी कोई टेक ओवर करना है, नहीं पीछे तो फॉरवर्ड तो करना नहीं है, सब भूल जाते हैं, सारे कल में जो भी पार्ट बजाया सब भूल गए, पर नए सिर जब शुरू करेंगे तो जो हमने पुण्य कमाए है वो तो आत्मा अपने साथ जरूर ले जाएगी, बाकी तो सब यहीं रह जाना है। तो इसीलिए बाबा कहते फिर सतयुग में आना है, पहले पहले आना है, लेट भी नहीं आना है, है? सबसे पहले आना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, जिन्होंने हिसाब किताब अपना पूरा किया है बस, पर थोड़ा रहा हुआ है तो धर्मराजपुरी से उसको पास करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। और कौन पहले पहले आएगा, जिसका बहुत काल का अभ्यास होगा, इसलिए बाबा ये तीन शब्द कहते हैं, एक बाबा कहते हैं अचानक, और दूसरा शब्द बाबा कहते हैं एवर रेडी, और तीसरा शब्द क्या कहते हैं, बहुत काल का अभ्यास। तो अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, इन तीनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। तो अचानक में तब पास होंगे जब एवर रेडी होंगे, और एवर रेडी तब कहलाएंगे जब बहुत काल का अभ्यास होगा, है ना। बहुत काल का अभ्यास है, जैसे बच्चे ने पूरा साल बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की है, बहुत काल का अभ्यास है, तो कभी भी एग्जाम हो जाए उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अचानक भी एग्जाम्स होते हैं ना, एकदम टेस्ट पेपर लिया जाता है, अचानक भी लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट भी होती है, फिर तो सब सरप्राइज टेस्ट होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए पहले बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अचानक के लिए हम तब एवर रेडी रह सकेंगे जब बहुत काल का अभ्यास होगा, इसलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में ये प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, हाँ मैं अशरीर आत्मा हूं। इसमें भी तीन स्टेप्स है, पहला स्टेप कौन सा है, देही अभिमानी, अशरीरी भी एकदम से तो नहीं बन सकेंगे ना, अशरीरी बनने के लिए देही अभिमानी स्थिति चाहिए, और देही अभिमानी स्थिति के लिए बाबा क्या प्रैक्टिस कराते हैं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये कार्य करती हूँ, उसके लिए बाबा ने उस दिन भी कहा आत्मा करावनहार है, ये इंद्रियां करनहार है। तो एक है मैं आत्मा करावनहार, इंद्रियां करनहार, ये हाथ में आत्मा चला रही हूं पर ये इंद्री तो मेरे से अलग है। फिर कभी बाबा कहते शिव बाबा करावनहार और आत्मा करनहार, शिव बाबा करावनहार आत्मा करनहार का मतलब है मैं निमित्त हूं, बाबा मुझसे करा रहे। उसमें भी बाबा ने उस दिन बहुत सुंदर बात कही, एक है साथ दूसरा है साथी, एक साथ और दूसरा साथी, दोनों में क्या अंतर है, साथ और साथी, साथी कब है और साथ कब है, ना? साथ माना कंबाइंड और साथी माना कंपेनियन, तो साथ माना कंबाइंड, अब जैसे कंबाइंड है साथ है तो एक अकेला तो नहीं होगा ना, उसके साथ दूसरा भी कंबाइंड है, जैसे वो जुड़े हुए होते हैं ना, जुड़वे बच्चे वो अलग चीज है, लेकिन जो जुड़े हुए होते हैं, कई तो सिर से जुड़े होते हैं, कईयों के हाथ ये पीठ से जुड़े होते हैं, कई फोटो दिखाते हैं से जुड़े हुए बच्चे, फिर उनको अलग करते हैं, क्योंकि अगर जुड़े हुए ऐसे रहेंगे तो जो एक करेगा दूसरे को वही करना पड़ेगा, है ना, ये हो नहीं सकता कि एक कुछ और करे दूसरा कुछ और करे, क्योंकि जुड़े हुए हैं, एक को नींद आएगी दूसरे को नहीं भी आएगी तो भी उसको नींद करनी पड़ेगी, होता है ना, थी एक वो इस मिसाल था, दो ईरान की दो बहनें थी, ईरान की, तो वो एक का ही मुझे तो वकील बनना है, दूसरे का ही मुझे डॉक्टर बनना है, है दोनों जुड़ी हुई थी। अब वकील बनना है डॉक्टर बनना है पर तो साथ साथ ही जाएंगी, तो वकील बने या डॉक्टर बने एक ही बन सकते हैं क्योंकि साथ में ही है। तो परंतु उसमें जो जुड़े हुए थे वो तो पसंद नहीं करेंगे, हर एक इंडिपेंडेंट चाहता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है। लेकिन बाबा कहते हैं जितना जुड़े हुए रहेंगे उतना आपको फायदा है, क्योंकि वो जो जिससे जुड़े हुए हैं, बाबा से जुड़े हुए हैं, वो तो हजारों हाथों वाला है, तो मैं तो दो हाथ वाला ही हूं। तो कोई भी आप कार्य करते हो आप कहेंगे अरे मैं तो अकेली हूं, देखो अकेला मुझे सब करना पड़ता है, अकेला करना पड़ता है, अकेली हूं, दो हाथ वाली क्या कितना करेंगे। लेकिन उस समय क्या सोचो, क्या सोचो, हाँ हजारों हाथों वाला बाबा मेरे साथ है तो अकेले थोड़ी है, आएगा ख्याल मैं तो अकेले हूं। तो हजारों हाथों वाला बाबा मेरे साथ ये कार्य कर रहा है तो फटाफट कार्य हो जाएगा, हजार हाथ लग जाएंगे तो क्या होगा, फटाफट हो जाएगा। तो एक तरफ है कंपेनियन, एक तरफ है जुड़े हुए, हाँ साथ में जुड़े हुए, दूसरा है संघ होना, कंपनी। तो कंपनी का मतलब बाबा कहते हैं कि हमारे साथ में है। दादी जानकी बहुत सुंदर उदाहरण देती थी कि बाबा कैसे मेरे साथ है, मेरे सिर पर है, तो बाबा छत्र छाया बन के मेरे सिर पर है और वो मेरा रक्षक है, ऊपर से भी रक्षक चाहिए ना। फिर बाबा मेरा मेरे आगे भी है, वो गाइड बन के मुझे गाइड कर रहा है। बाबा मेरे पीछे भी है, वो गार्ड बन करके मेरी रक्षा पीछे से कर रहा है। और फिर मेरे साथ भी है, साथ है या लेफ्ट भी राइट भी, ऐसे कई उदाहरण आते हैं। हम अकेले हैं लेकिन बाबा को बहुत याद कर रहे हैं, और समझो मानो कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पीछे पड़ा या कुछ, लेकिन वो हमको हाथ नहीं लगा सकता है। क्यों? वो तो ने ऐसे उदाहरण दिए हैं, अनुभव सुनाए हैं कि वो व्यक्ति ने क्यों नहीं आगे बढ़ के हाथ की हाथ उठाया, क्योंकि वो देखता था कि इनके साथ कोई और साथ में है, कोई बूढ़ा ब्राह्मण कोई उनके साथ में है, तो इसलिए वो नजदीक भी नहीं आए। था कोई नहीं, लेकिन क्योंकि हम तो बाबा की याद में थे और उनको क्या दिखाई दिया कि कोई इनके साथ है, इसीलिए उन्होंने हिम्मत नहीं रखी कि वो नजदीक भी हमारे आ सके, क्योंकि उनके साथ कोई है, अकेले हैं तो वार करेंगे। तो बाबा कहते अगर बाबा को सदा साथ रखा तो माया वार नहीं करेगी, माया वार तब करती है जब अपने आप को अकेला समझते हो। तो देखो साथ भी और साथी भी है, तो साथ भी और साथी भी, कंपनी भी और कंपेनियन भी, तो इसीलिए ये दो शब्द बाबा कहते हैं। तो जब हम इस प्रकार से अपने आप को अनुभव करते हैं तो सहज हम सब बंधनों से मुक्त होते जाते हैं। फिर घर जाना, इसीलिए घर को तो कभी भूलो नहीं, कभी भी नहीं भूलो घर को, मुझे जाना है घर जाना है। तो बैग बैगेज तैयार, हमारे अष्ट शक्तियों में क्या दिखाते हैं ना, समेटने की शक्ति में देखा है आपने, समेटने की शक्ति का चित्र, तो समेटने की शक्ति में क्या दिखाते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, एक बिस्तरा दिखाते हैं, बिस्तरा और एक पेटी और एक हैंडबैग, एक हैंडबैग और एक पेटी और एक बिस्तरा। तो बाबा कहते हैं ये तीन चीजें जब कोई यात्रा पर जाते, पहले जमाने में तो बिस्तरा भी ले जाते थे, चलो आजकल तो ट्रेनों में मिलता है लेकिन पहले तो कहाँ मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था, तो अपने साथ होल्ड ऑल लेते थे, तो वो होल्ड ऑल में सब सामान डालते थे। तो तीन चीजें लेते थे, एक हैंडबैग, एक सूटकेस और तीसरा होल्ड ऑल। तो बाबा कहते हैंडबैग तुम्हारा कौन सा जो आपके साथ जाना है, हैंडबैग हमारी कौन सी, हैंडबैग में क्या डालते हैं, पर्स में क्या डालते हैं माताएं, हाँ दवाई डालेगी या पैसा डालेगी या छोटी मोटी चीजें जो बार बार चाहिए इसलिए बार बार खोलना पड़ता है, तो वो हैंडबैग में डालेगी। फिर प्लेन में जाते ना तो वो एक छोटी सी बैग लेते अटैची जैसे छोटी सी, तो वो अंदर प्लेन में रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, ताकि जब चाहिए, बीच बीच में चाहिए तो उतार के वो चीज लेते हैं। और फिर तीसरा क्या होता है, बड़ी सूटकेस, वो चेक इन वो भेज देते हैं और वो आपको डेस्टिनेशन पर मिलेगा, जहां आपको उतरना है, जहां आपको आप पहुंचेंगे वहां आपको वो सूटकेस मिलेगा, वो बेल्ट पर आ जाता है सूटकेस आपका, वो आपने अपने साथ अपने हाथ में नहीं लिया, पर दो चीजें अपने हाथ में ली, एक हैंडबैग और एक छोटा सा सूटकेस, हाँ, या जो भी। तो बाबा कहते ये तीन चीजें तुमको साथ में है, पर एक दो चीजें तो अपने साथ है, लेकिन जो तीसरी चीज है वो आपको चेक इन करना है, वो जब मंजिल पर पहुंचेंगे वहां आपको मिलेगी। अब बताओ वो तीन चीजें कौन सी, कौन सी? जो आत्मा के साथ जाएगी। आत्मा के साथ क्या जाता है? आत्मा माना क्या? आत्मा हम किसको कहते हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन आत्मा की शक्तियां हैं। तो जो हमारा छोटा सा हैंडबैग है ना, वो हमारा मन है। अब मन में क्या रखना है? जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं, जिसको आप घुमा नहीं सकते, इसलिए अपने साथ ही रखते, पर्स अपने साथ में रखते हैं, ताकि कहीं कोई लूट न ले, कोई घुमा न, कोई उठा न ले। तो माना मन, माने मन माना हमारे संकल्प, वो हमारे संकल्प, हम जो सोचते हैं वो आत्मा के साथ जाता है, क्योंकि कहते हैं ना जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। तो वो हमारी सोच कैसी हो, तो हम उस मन रूपी हैंडबैग में क्या डालें, जो वो मन से उसके आधार से हमारा भाग्य बनता है, क्योंकि जो संकल्प करेंगे वही वचन में आएंगे, वही कर्म में आएंगे, वही भाग्य बनेगा। ये क्रम है, हमें वो क्रम बताते हैं। पहले आपकी सोच, जैसे आपकी सोच होगी वैसे ही आपकी दृष्टि बनेगी, वैसे ही आपकी वृत्ति बनेगी। वृत्ति क्या होती है? वृत्ति माने वो व्रत, वाइब्रेशंस बनते हैं ना, जैसे आप पानी में आप पत्थर डालो तो क्या होता है, वो व्रत बनते हैं। तो उसको ये वृत्ति माना, आपके जो सोच से वाइब्रेशंस बनते हैं वो वातावरण में फैलते हैं। तो पहले सोच, फिर उसके आधार से दृष्टि, फिर उसके आधार से वृत्ति, फिर उसके आधार से भावनाएं, क्योंकि अंदर में जैसी दृष्टि होगी, भावना होगी, वैसी वृत्ति बनेगी। फिर उसके आधार से हमारे वचन, फिर वैसे कर्म, फिर उसके बाद कर्म के बाद फिर आता है आदत, वो आदतें बन जाती है। फिर आदत के बाद होता है हमारा व्यक्तित्व, और फिर व्यक्तित्व के आधार से हमारा भाग्य। तो क्या सोचो, उस सोच से आपका भाग्य बन जाएगा। इतना लंबा प्रोसेस है। तो इसीलिए मन में क्या सोचो, क्योंकि मन का काम तो सोचना ही है। तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन शक्तियां हैं आत्मा की। तो बुद्धि क्या है? मन है आपकी पर्स। तो क्या सोच रहे हो? बहुत जरूरी बातें वही सोचनी है, बाकी तो बेकार बातें तो हमको थोड़ी उठा के फिरनी है, पर्स तो हल्की चाहिए ना। फिर बुद्धि में क्या सोचो? बुद्धि माना जो काम की चीज है, माना गुण और शक्तियां। गुण और शक्तियां वो बुद्धि में भरो, जो बाबा कहते हैं समय पर काम आएगी। किस समय कौन सा गुण चाहिए, किस समय कौन सी शक्ति चाहिए, आपके पास हाजिर हो। आपने चेक इन लगेज में दे दिया, भेज दिया, तो आपके पास थोड़ी रहेगा। तो बीच बीच में ये काम में आने वाली चीजें वो आपकी बुद्धि में, आपके गुण, आपकी शक्तियां रहे। क्या मेरे अंदर वो सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, जो बाबा कहते हैं आपने ऑर्डर किया और वो तुरंत वो शक्ति हाजिर हो जाए। ये नहीं कि आपने ऑर्डर अभी किया और 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद वो शक्ति आए, उसी समय चाहिए तो आपके पास हाजिर होगा। फिर संस्कार जो है वो बाबा कहते हैं आपके कर्म से बनते हैं। तो जो आप श्रेष्ठ कर्म करते हो, उन श्रेष्ठ कर्मों का फल उस समय मत चाहो। कई बार होता है ना, मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, कोई कुछ कहता ही नहीं है, किसने पानी भी मुझे ऑफर नहीं किया, मैं इतने धूप से आ गया इतनी सेवा करके, और देखो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। हाँ भाई चलो पानी पूछो, वो भी नहीं, खाना तो दूर, पानी भी नहीं पूछा, इतनी सेवा करके आया। तो बाबा कहते वो भी नहीं सोचो, आपने जो नेक काम किया नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, नेकी कर दरिया में डाल, बाबा ने देखा है, भले किसी और ने देखा या ना देखा हर्जा नहीं है, पर बाबा ने देखा है, वो आपका भाग्य बन गया, आपके होल्डऑल में चला गया। और कहाँ मिलेगा आपको? सतयुग में। हाँ, यहाँ भी बाबा ने उस दिन कहा ना, यहाँ भी मिलेगा, ये एक जन्म भी है, परंतु धीरज का फल मीठा है। अधीर्य नहीं बनना है, अधीर्य नहीं बनना है, बाबा सब जानते हैं, इसीलिए हम अपना नेकी का काम करते जाएं, बाबा की श्रीमत पर चलते जाएं, और देखो बाबा समय पर कैसे वो पकता है फल, तो भी वो मीठा लगता है, धीरज का फल मीठा है। तो वो चेक इन लगेज है, नेकी काम करो और बाबा पर छोड़ दो, बाबा को दे दो, और देखो आप हल्की हो जाओ, लाइट, बी लाइट, ट्रैवल लाइट। तो ट्रैवल लाइट माना कोई भी बोझ उठाकर नहीं चलना है, तभी तो फरिश्ता बनेंगे, तभी तो घर जाएंगे। और फिर जो हमने संस्कार बनाए हैं वो शुद्ध पवित्र संस्कार, वो फिर देवता के रूप में हम अनुभव करेंगे सतयुग में। तो देखो ब्राह्मण से देवता बनने तक इतनी लंबी यात्रा है, तो लक्ष्य कितने हैं और उद्देश्य देखो एक। तो अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, कहाँ तक पहुंचे हैं, वो भी अपने आप को देखना है। उसी अनुसार ही हम देवता बनेंगे, फिर शुरू में आएंगे सतयुग में या बाद में आएंगे, त्रेता के अंत में आएंगे, वो फिर उसके आधार पर सब निर्धारित होता है। तो ये भट्टी का लक्ष्य है, और भट्टी माना पकना, भट्टी माना पकना, अग्नि में पकना। अग्नि में जब कोई चीज पड़ती है उसके आगे केवल आग ही आग है और कुछ नहीं है, और जो चीज अग्नि में पड़ी वो बदल जाती है, वैसी की वैसी नहीं रहती है। अग्नि में कोई भी चीज डालो, डिपेंड्स कि कौन सी चीज है, उसका क्या परिवर्तन होता है, वो चीज के आधारित है ना। कितनी चीजें देखो, हम कोयला डालते हैं आग में तो क्या होता है, कोयला राख बन जाता है, कहाँ वो काला काला कोयला एकदम राख बन गया, रंग बदल गया, उसका सब कुछ बदल गया। फिर उसमें हम किचरा डालते हैं आग में तो किचरा क्या होता है, वो कार्बन बन करके वो धुआं बन के उड़ता है, ये धुआं बन गया, वो किचरा धुआं बन गया और उड़ गया, कार्बन पार्टिकल्स उड़ गए। फिर इसमें सोना डालते हैं आग में तो क्या होता है, सोने का शुद्धिकरण होता है, सोना होता है ना, उसमें कई धातु अंदर मिलाए जाते हैं, तो वो तांबा चांदी लोहा बहुत कुछ, तो सबसे पहले जो पिघलता है वो लोहा पिघलता है, फिर उसके बाद तांबा पिघलता है, उसके बाद फिर चांदी पिघलती है, उसके बाद सोना। सोने का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इसलिए बहुत तेज आग चाहिए सोने से, वो खाद निकाल करके सोने तक, सच्चे सोने तक पहुंचने के लिए। और सोने से भी ज्यादा टेम्परेचर जिसमें वो चीज पिघलती है वो प्लैटिनम, मालूम है ना, ये जो आपकी तारे है ना, ये जो बल्ब है, बल्ब में तार होती है, वो प्लैटिनम की तार होती है, वो नहीं तो ऐसे आग लाल लाल होती है, परंतु वो पिघलती नहीं है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो इसीलिए सोना माना सब कुछ खाद पहले पिघल जाए, सारी पिघल जाए और आत्मा सच्चा सोना बन करके निकले, तो वो बाबा कहते हैं भट्टी में पकना। फिर और क्या पकता है भट्टी में, जैसे कोई नरम चीज डालते हैं तो नरम चीज डालने से वो स्ट्रांग हो जाता है, पक्का हो जाता है, जैसे ईंट मिट्टी होती है, वो मिट्टी को भट्टे में डाला तो क्या होगा, वो ईंट बन गई, हाँ इतनी स्ट्रांग होती है, जो ऐसे गिराओ तो भी इतनी टूटेगी नहीं। फिर उसमें कोई ऐसे कठोर चीज डालो तो क्या होता है, वो चीज नरम हो जाती है, जैसे आलू डाला, बैंगन डाला तो क्या होता है हाँ बैंगन ऐसे आग में डालते ना तो वो बर्था बन जाता है। तो जो बहुत कठोर चीज है वो नरम बन जाती है, और जो बहुत ऐसे सॉफ्ट है वो स्ट्रांग बन जाता है, मजबूत बन जाता है। तो आत्मा भी ऐसे ही बन जाती है, इस योग की अग्नि में। बहुत थोड़ी कमजोर थी, बस बाबा की याद से इतनी शक्ति आती है जो आत्मा इतना सहज डबल लाइट बन जाती है, और फिर फ्लेक्सिबल भी बन जाती है, माना सॉफ्ट भी बन जाती है, ऐसा कठोर उस रूप से नहीं जो हार्ड हो और गिरे तो टूटे, लेकिन जो फ्लेक्सिबल होते हैं ना, फ्लेक्सिबल चीज जैसे नरम चीज है, अगर वो गिरी भी तो टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। तो आत्मा को बाबा कहते हैं सरल स्वभाव, नहीं तो कैसे कठोर स्वभाव के होते हैं लोग। अब कठोर स्वभाव का कोई होगा तो क्या होगा, कठोर होगा तो वो उसको टेंशन ही टेंशन है, सारा दिन हर एक से नुक्स ही निकालता रहेगा, और नुक्स क्या निकालेगा, अपने आप को ही दुखी करता है। टेंशन में रहने से क्या होगा, उसको ही दुख होता है, उसी का ही वही रोगी बन जाता है। ऐसे बहुत मिसाल देते हैं कि एक व्यक्ति था, इतना सदा टेंशन में रहता था, इतना टेंशन जो भी है उसके नजदीक आए वो उस टेंशन के कारण वो डर जाते थे, इनके नजदीक ही नहीं आते थे, वो अंदर में खुद भी परेशान दूसरों को भी परेशान करता था। तो कई उनको कहते थे भाई जरा आराम करो, थोड़ा हवा में घूमो, बगीचे में जाओ, पक्षियों से बातें करो, मानो कुछ प्रकृति का सुख लो। लेकिन कभी प्रकृति का सुख नहीं लिया उसने, टेंशन टेंशन टेंशन, अब बीमारियां आ गई उसको, और डॉक्टर ने उसको एक दिन कह दिया भाई तुमको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम टेंशन में रहते हो ना इसीलिए होता है, तो आप थोड़ा छुट्टी पर जाओ। तो छुट्टी पर जाओ, प्रकृति में घूमो और उसका आनंद लो, तो देखो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वो सोचे बीमारी है क्योंकि सदा टेंशन में। तो इसीलिए बाबा कहते रिलैक्स भी रहना है, फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए, कोई बात नहीं। ये नहीं मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, मैं, वो बाबा कहते वो भी तो अभिमान है, मैं, तो इस अभिमान से भी परे रहना है। तो अग्नि में पकना है यहाँ, हाँ तैयार हो ना सब इस अग्नि में पकने के लिए, उसके लिए क्या करना है ये आप सभी को बता दिया होगा, और भी बताएगी आपको हमारी कविता बहन प्रियम बाबा को। यार
अभी हम आप सबके स्वागत के लिए भ्राता सतीश जी को आमंत्रित करते हैं कि मधुर वाणी के गीत और संगीत के साज से और आपका स्वागत करें। दीदी बता रहे हैं कि मधुर वाणी ग्रुप के जो निदेशक हैं वो तो हमारे सतीश भाई हैं, लेकिन हल्दर भाई और निरंजन भाई भी उनके साथ में आप सबका स्वागत करने के लिए गीत संगीत के द्वारा आ रहे हैं। आप भी जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, और उनके गीत के साथ साथ आप भी आनंदित होने के लिए अपनी ताली को बजाते रहें गीत के साथ। और सभी टीचर्स बहने लास्ट में मिलके टोली लेके जाएंगे।
ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति।
प्रयागराज नाम लेते ही सबके कान चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि प्रयागराज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सेवाएं की कुंभ की उसके आधार पर सब याद करते हैं, कौन नहीं जानता है। और साथ में आज गुजरात भी आया है, हम देख रहे हैं भारती बहन हमारी बहनें आई हैं, लोटस भी आया है, सूरत भी आया है, तो एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर लें। संयोग से मुझे इस बात का ख्याल नहीं रहा, प्रयागराज का उल्लेख किया है, लेकिन आप इसमें इंक्लूड हैं। हम सब मधुबन में आकर के एक मधुबन निवासी बन जाते हैं, इसलिए मधुबन निवासी बनने की और 4 दिन में 14 वर्ष की भट्टी करने की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
आज तो मधुबन तप करने प्रयागराज आया है आज को मधुबन तप करने, प्रयागराज आया है मनोरम दीदी ने इसको मनोरम और बनाया है। आज तो मधुबन तप करने प्रयागराज आया है मनोरम दीदी ने इसको मनोरम और बनाया है। आज तो मधुबन तप करने प्रयागराज आया है। पहली बार सेवा की धूम मचाई है, यज्ञ इतिहास में पहली बार सेवा की धूम मचाई है। करोड़ों भक्तों के दिल की हुई पूरी सुनवाई है। यज्ञ इतिहास में पहली बार सेवा की धूम मचाई है। करोड़ों भक्तों के दिल की पूरी सुनवाई है। कुंभ मेले की सफलता का हृदय आभार लाया है। आज तो मधुबन तप करने प्रयागराज आया है मनोरम दीदी ने इसको मनोरम और बनाया है। आज तो मधुबन तप करने भरपूर करते हैं, बुलाकर मधुबन भट्टी में बाबा भरपूर करते हैं। मधुर वाणी में स्वागत कर थकावट दूर करते हैं। बुलाकर मधुबन भट्टी में बाबा भरपूर करते हैं। मधुर वाणी में स्वागत कर थकावट दूर करते हैं। अपने घर में करो विश्राम चारों धामों ने गाया है। आज तो मधुबन तप करने प्रयागराज आया है मनोरम दीदी ने इसको मनोरम और बनाया है। आज तो मधुबन तप करने यादगार भट्टी यहाँ से शक्ति भरनी है। बने यह यादगार भट्टी यहाँ से शक्ति भरनी है। तपस्या 14 वर्ष वाली 4 दिन में ही करनी है। बने यह यादगार भट्टी यहाँ से शक्ति भरनी है। तपस्या 14 वर्ष वाली 4 दिन में ही करनी है। शशि दीदी शिलू दीदी कभी
दीदी ने सुनाया है। आज तो मधुबन तप करने प्रयागराज आया है। मनोरम दीदी ने इसको मनोरम और बनाया है। आज तो मधुबन तप करने प्रयागराज आया है। आज तो मधुबन तप करने